ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज इस मुबारक मस्जिद में हाजिरी का एक और मरतबा अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया। मैं सबसे पहले जब बरतानिया आया था, पहली बार या दूसरी बार, तो यहाँ पर सबसे पहले किसी मस्जिद में हाजिरी हुई तो यही मस्जिद, और हज़रत माना मोहम्मद आज़म साहब दामत बरकातुहुम की शफ़क़तें मुझे अच्छा आई। आज का ये इज्तिमा उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मुनक़द हुआ है। मैं इस ट्रस्ट से पहले वाकिफ नहीं था। सबसे पहले मुझे इस ट्रस्ट का तारुफ हज़रत मौलाना मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम ने कराया और मुझे बताया कि इस ट्रस्ट ने मेरे जो कुरान करीम का तर्जमा है, आसान तर्जमा कुरान, उसे नाबीनाओं के लिए ब्रेल में मुरत्तब किया है और उसके लिए नौशेरा में, पाकिस्तान के एक शहर नौशेरा में उसकी तकरीब रखी थी और वहाँ मुझे उसकी दावत दी गई, तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो नाबीना हजरात हैं, जैसे कि मौलाना ने अपने भी बयान में फरमाया था कि वो सुन सुन कर पांच पारे नाबीना ने याद किए थे, अब अल्लाह ताला ने इनकी कोशिशों के नतीजे में वो ब्रेल कुरान तैयार, ब्रेल कुरान और उसके साथ तर्जमा और तफसीर तैयार करवाई और के 50 नुस्खे 50 नाबीनाओं को मेरे सामने तकसीम किए। तो उस वक्त मुझे इस ट्रस्ट से का तारुफ हुआ और फिर नौशेरा में ये तकरीब मुनक़द हुई थी, वहाँ जो यतीम यतामा के लिए जो काम किया जा रहा है उसको भी मैंने आँखों से देखा, और फिर एक ऐसी तकरीब कराची में मुनक़द की गई जिसमें नाबीनाओं को दावत दी गई थी और उनको मज़ीद 50 नुस्खे उस वक्त तकसीम किए गए। ब्रेल कुरान कोई मामूली, ब्रेल किताब कोई मामूली चीज़ नहीं होती, वो बड़ी बड़ा ज़बरदस्त उस पर अखराजात आते हैं एक नुस्खे के ऊपर, तो वो 50 नुस्खे मेरे सामने नाबीनाओं को तकसीम किए गए। तो उससे मुझे इस वेलफेयर ट्रस्ट का की खिदमात का कुछ अंदाज़ा हुआ। फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दूसरी सरगर्मियों से, जो शाम में, बर्मा में और दूसरे कई मुल्कों के अंदर जो इनकी सरगर्मियां हैं और जो इनकी खिदमात हैं उनका तारुफ हुआ, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक ताल्लुक़ खातिर इनसे पैदा हुआ। अल्लाह ताला इनके कामों में बरकत अता फरमाए और मैं इनका ममनून हूँ कि उन्होंने अपने इस काम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा लगाने के लिए मुझे ये सआदत बख्शी कि इस इज्तिमा में शरीक हो सकूं। सूरत हाल ये है कि अल्लाह तबारक व ताला का फजल व करम है कि उसने हमें दीन इस्लाम से वाबस्ता फरमाया, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि एक तो अल्लाह ने ईमान की दौलत अदा फरमाई जिससे बड़ी इस कायनात में कोई और दौलत नहीं। हमारे बुजुर्ग थे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अजल खुलफा में से थे। सिर्फ खलीफा ही नहीं थे, आशिक़ ज़ार थे, उनकी मजलिस में मुझे बचपन था मेरा, और उनकी मजलिस में जब कभी हाजिरी होती थी तो ऐसा लगता था कि पूरी मजलिस पर एक नूर छाया। इनका एक एक लफ्ज सीने में उतरता हुआ महसूस होता। तो वह एक मरतबा फरमाने लगे, बड़े बालिहाना अंदाज में फरमाने लगे कि ईमान बड़ी दौलत है, ईमान बड़ी दौलत है, ईमान बड़ी दौलत है, इसको बचा बचा कर कब्र तक ले जाओ, आगे जीत ही जीत है।
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान।
ईमान बड़ी दौलत है, इसको बचा बचा कर कब्र तक ले जाओ, आगे
जीत ही जीत।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत हमें घर बैठे अपने फजल व करम से अता फरमा दी, उस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है। फिर ईमान के कुछ तकाजे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से हमसे अदा करवा लिए अपनी तौफीक से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं नमाजी हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला ने हज उमरे की भी तौफीक अता फरमाई हुई है, जितना इस पर शुक्र अदा किया जाए कम। लेकिन एक बात है जो मैं अपने आप को मुखातब करके अर्ज करता हूँ कि इस सारी नेमतों को की नाकदरी किए बगैर अगर हम अपना जायजा लें तो हमारी सरगर्मियां सिर्फ इबादात की हद तक महदूद है, और ये समझते हैं कि बस नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, बस ज़कात जितनी हो सके दे दी, हज कर लिया, उमरा कर लिया, तो बस मुसलमानी का हक अदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता फरमाया उसमें सिर्फ इबादात नहीं है, यानी जिनको रस्मन इबादात कहा जाए, इस्तिलाही इबादात इनको कहा जाए, दूसरे मजाहिब का ही मामला है बेशक, ईसाइत को ले लो, यहूदियत को ले लो, हिंदू मत को ले लो, उन मजाहिब में मजहब नाम है सिर्फ चंद रस्मों का, चंद इबादतों का, बस उससे आगे जिंदगी के मसाइल में उनका कोई दखल नहीं। और आज जो सेकुलरिज्म का नारा दुनिया भर में फैशन बन गया है तो वो भी इसलिए कि भाई चलो तुम मस्जिद में जो चाहो करते रहो, मदरसे में जो चाहो करते रहो, हमारी जिंदगी में दखल ना दो। ये इसने हमारे जहन पर भी ये तसव्वुर मुसल्लत कर दिया है कि बस हम नमाज रोजा कर दें तो बस काफ़ी है, मस्जिद में जाते हैं, शफे अव्वल में नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जिक्र करते हैं, बस हक अदा हो गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता फरमाया वो सिर्फ इबादात, जाहिरी इबादात पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह जल्ला जलालू ने हमें हिदायत अता फरमाई, और उस हिदायत पर अगर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनूदी की खातिर अमल किया जाए तो वो भी इबादत है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बिला वास्ता इबादत है और ये बिलवास्ता इबादत है। वो क्या है? अल्लाह की मखलूक के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ रहम का मामला करना, उनकी तकलीफों को दूर करना, उनका दिल खुश करना, ये सब क्या है? सब इबादत। हम आजकल सब लोग मुझसे कहते हैं भाई हदीस की इजाज़त दो, तो हम किसी ज़माने में हज़रत सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह के वक्त से लेकर आज तक मुहद्दिसीन का यह तरीका रहा है कि जब कोई शागिर्द उनसे हदीस पढ़ने जाता तो सबसे पहले जो हदीस वो सुनाते थे उसको हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया कहा जाता है, मैं भी जब कभी इजाजत देता हूँ तो वो हदीस पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। वह हदीस क्या है? वह हदीस यानी जिसको मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े अकाबिर ने, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने हदीस पढ़ाने के लिए सबसे पहले जिस हदीस का इंतखाब किया वो क्या है? वो अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है कि रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रहमून यरहमुहुमुर रहमान तबारक व तआला, इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। क्या फरमाया? अर्रहमून रहम करने वाले जो भी हैं दुनिया में, यरहमुहुमुर रहमान उन पर रहमान रहम करता है। और लफ्ज भी यानी फरमाया कि अल्लाह ताला रहम करता है, रहमान रहम करता है। अब जो रहमान जिसकी रहमत आम भी है ताम भी है, वो अगर रहमत करेगा तो दुनिया और आखिरत इंसान की सब संवर जाएगी। किनकी? अर्रहमून, जो दूसरों पर रहम करते। और फिर फरमाया कि इरहमु मन फिल अर्द, जमीन में जितने भी लोग हैं उन सब पर रहम करो। तो यरहमकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करे, जमीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करे। और यहां देखो कैसी उमूमी बात फरमाई गई है, जमीन वालों पर रहम करो, उसमें मुसलमानों की तख्सीस नहीं, मुसलमान की तख्सीस नहीं, गैर मुस्लिम भी हो तो उस पर भी रहम का हुक्म। रहम के उनवान मुख्तलिफ होते हैं, किसी पर किसी तरह रहम किया जाता है, किसी पर किसी तरह रहम किया जाता है। जहां तक इंसानी हुकूक का ताल्लुक, उसमें मुसलमान गैर मुस्लिम बराबर। अगर कोई आदमी पानी में डूब रहा है, जिंदगी उसकी खतरे में है, तो उस वक्त हमें यह हुक्म नहीं है कि ये देखो ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम। उसको बचाना हमारे जिम्मे दीनी फरीजा है, रहम उसके ऊपर करना दीनी फरीजा है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा कहीं जा रहे थे तो देखा कि एक यहूदी है, वो भीख मांग रहा है, तो रुक गए और फरमाया अपने हाकिम से, फरमाया शाम का वाक्य है कि ये बड़े नाइंसाफी की बात है कि हमने इनकी जवानी तो खा ली और बुढ़ापे में हम इनको इतना नहीं दे पा रहे कि ये भीख मांगने पर मजबूर। लिहाजा रहम और तरस खाना इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब बराबर है। यह सबसे पहली तालीम जो इस्लाम में दी जा रही है तालिबिल्म को, भाई सबसे पहले शख्स पढ़ने आया है, हदीस पढ़ने आया है, तो उसको नमला मालूम की नियात पढ़ा देते, उसको नमाज की कोई फजीलत बता देते, उसको ईमान की हकीकत बता देते। लेकिन मुहद्दिसीन ने इख्तियार क्या किया? हदीस और रहमा, जिसको कहा जाता है कि रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। اب یہ رحم کرنے کے بے شمار عنوان ہیں جن کا پورا باب حقوق العباد کا اس میں آتا ہے, بندوں کے حقوق, اور خاص طور پر مسلمان مسلمان کے لیے جو رحم کرے وہ اور دوسروں سے بہت زیادہ. یہ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یخذلہ, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ہندوستانی ہندوستانی کا نہیں, عرب عرب کا نہیں, ایرانی ایرانی کا نہیں, بلکہ مسلمان مسلمان کا بھائی. اس بھائی ہونے کا کیا تقاضا ہے کہ لا یسلمہ, اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرنا, ولا یخذلہ, اس کو بیجار و مددگار نہیں چھوڑتا. اگر کسی جگہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کو بیجار و مددگار نہ چھوڑے, اس کے ساتھ کھڑا ہو. اگر قدرت ہے ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے بچانے کی قدرت ہے تو وہ فرض ہے, اگر وہ قدرت نہیں ہے تو جس طرح بھی اس کو فائدہ پہنچانے کا امکان ہو وہ فائدہ پہنچانا اس کے ذمے فرض عین ہے. اور فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کا حال یہ ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے, زخم لگ جائے, تو پورا جسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر پورا جسم جو ہے وہ اس کے لیے راتوں کو جاگتا ہے, بخار جھیلتا ہے. کس کے لیے؟ اس ایک عضو کے لیے جس کے اندر تکلیف ہوئی ہے. تو جب سارے مسلمان مل کر ایک جسم ہیں, ان کے کسی فرد کو, ایک فرد کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ تکلیف ہمارے سب کے دلوں میں کانٹا بننی چاہیے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی عبادتیں اپنی جگہ, بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں, شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن یہ سارے فرائض ہیں. پڑوسی کے حقوق, گھر والوں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, اس کی پوری زبردست فہرست ہے ہماری جو فقہ کی کتاب ہے ہدایہ, جس میں فقہ سب سے پہلے پڑھایا جاتا ہے. تو اس کا صرف ایک چار اس کی جلدیں ہیں. ایک جلد ہے عبادات سے متعلق, تین جلدیں ہیں ان تمام حقوق اور فرائض سے متعلق. جس کا مطلب کیا ہوا کہ اصطلاحی عبادات وہ دین کا ایک تہائی حصہ ہوئے, اور دو تہائی حصہ حقوق العباد سے متعلق, بندوں کے حقوق. عبادات میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے, آدمی جتنی تلافی ہو سکے وہ کرے, مانگ لے توبہ, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف توبہ سے معاف نہیں کرو جب تک تم اس بندے سے معافی نہ مانگو جس کی تم نے حق تلفی کی. تو یہ تین حصے جو ہیں دین کے, یہ ان کی طرف ہماری توجہ, ان کی اہمیت پہچاننا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, اس کی ہم سب میں کمی پائی جاتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کسی جگہ ظلم و ستم کا شکار ہیں, مقہور ہیں, مجبور ہیں, ان کی جانیں خطرے میں ہیں, ان کی عزتیں خطرے میں ہیں, और हम रात को आराम से सो जाएं और खाने आराम से खाएं, बड़ी तकरीबात मुनक्किद करें, लाखों रुपया उसके ऊपर खर्च करें, ये एक मुसलमान का काम नहीं हो सकता। जब कहीं मुसलमानों का के ऊपर किसी जगह भी कोई आफत आए तो हर मुसलमान का फर्ज है कि वो उसकी इमदाद में जो कुछ कर सकता हो वो करे। अब इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर मुझे बताने की हाजत नहीं, आप सब लोग जानते हैं, मौलाना ने और ज्यादा तफसील बयान फरमाई मौलाना मोहम्मद साहब ने, क्या क्या जुल्म हो रहा है, किस किस जगह हो रहा है। और मुसलमान को एक लुकमे तर समझा हुआ है उनके दुश्मनों ने, बर्मा क्या, फलस्तीन क्या, कश्मीर क्या, शाम क्या, इराक क्या, हर जगह मुसलमान मजलूम और मकबूल है। और बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जिन लोगों को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए था, जिनके पास दौलतें हैं, जिनके पास खजाने हैं, वो न सिर्फ ये कि उनकी मदद करने से कासिर हैं बल्कि उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम किया जा रहा है। फलस्तीन में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ आप सब लोग जानते हैं, और जो आज भी हो रहा है, मस्जिद अक्सा हमारा तीसरा किबला, उसके मीनारे सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश कर, लेकिन वहां पर मुहासरा है यहूदियों का, और मुसलमान को नमाज पढ़ना भी आसान नहीं हुआ। लेकिन हमारे ही भाई बंद हैं, बाघ हमारे ही भाई बंद हैं, जो बजाय इसके कि उन मजलूमों का साथ देते थे वो जालिमों का साथ देने के लिए। बताए अल्लाह का कहर ना आए तो क्या होगा। तो मेरे हम लोग जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारे कैसे हमें चैन आ रहा है, कैसे हम चैन की नींद सो रहे हैं, कैसे हम लज्जतों के साथ खाने खा रहे हैं, जबकि हमारे भाई बहनें एक किस्सा नहीं है, सैकड़ों वाकयात हमारे इल्म में है कि किस तरह मुसलमानों को लुकमे तर बनाया जा रहा है, हमारी बहनें उनकी इज्जतें तार तार की जा रही हैं। ये एक जुमला जो मौलाना ने सुनाया कि उस खातून ने जो कहा कि आप उसकी कर्म का अंदाजा करें, इस जुमले में जो कर्म पोशीदा है उसका अंदाजा करें कि हमारे लिए रातें बहुत मुश्किल होती हैं। कभी ऐसा होता था कि एक कश्ती जा रही है मुसलमानों की और उसको लूट लिया गया, सिंध के अंदर राजा दाहिर ने लूट लिया, एक आवाज उठी एक खातून की कि हज्जाज तू कहां है, हज्जाज जो जालिम मशहूर था, उसको आवाज दे दी एक औरत ने, तो मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर बनाकर वहां पर आज हम उसके खातिर की वजह से मुसलमान बैठे। एक औरत की आवाज, कितनी खवातीन चीख रही हैं, कितने बच्चे पुकार रहे हैं, लेकिन हम अपने ऐशो आराम के अंदर मगन हैं। तो ऐसे मौके पर जब हम अपने फराइज अदा ना कर रहे हों, जब हम अपने बहन भाइयों की जिंदगी और इज्जत की तहफ्फुज़ ना कर सक रहे हैं, तो वाक्यतन दुख है हमारे ऊपर।